हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 17 एंड 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ता। स्मर्तव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्ववित्थि निषेदास्यो एतयोरेव किंकरः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राद्रहो न परः। खरारविन्दे न पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्र स्यपुटे शयानम्, बालं मुकुंदं मनसास्मरां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबस्वा मृतुमेतदेव, गोविंद नाम धर्माधवेति। वंशी विभू शित करा नवनीरधाभा पीताम्भरधरुणमिं बकलधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्र अहं न जाने व्रजे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपांगनानां चदुकूलचोरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम् चोराय गण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अध्याय 16 जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोक संख्या 17। सुत गोस्वामी के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सुत गोस्वामी कहते हैं, तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नाति दूरे किलाशर्यम् यदासीत् तन्निभोदमे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नाति दूरे किलाशर्यम् यदासीत् तन्निभोदमे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नाति दूरे किलाशर्यं यदासीत् तन्निभोदमे। शब्दार्थ तस्य महाराज परीक्षित का एवं इस प्रकार वर्तमानस्य ऐसे विचारों में लीन रहकर पूर्वेशां अपने पूर्वजों में वृत्तिम अच्छा कार्य अन्वहम दिन प्रतिदिन न नहीं अति दूरे काफी दूर किल निश्चय ही आश्चर्यम यानी आश्चर्यजनक यत वह आसीत था तन्निबोध में यानी जो उसे जानो में यानी मुझसे अनुवाद। सूत गोस्वामी कहते हैं अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। यहाँ पर सूत गोस्वामी उन ऋषियों को शौनक मुनि को जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि कस्य हेतुर्निजग्राह कलिम दिग्विजये नृप निर्देव चिन्ह त्रिक्षूत्र असौगाम्य पदाहनम कि आप गोस्वामी आप ये बताओ कि जब दिग्विजय करके महाराज परीक्षित वापस लौट रहे थे और उन्होंने देखा कि एक शूद्र राजा का वेश धारण करके एक गौ को प्रहार कर रहा था गौ और बैल के जोड़े को तो आप ये बताओ कि राजा ने उनको प्राण दंड क्यों नहीं दिया उन्हें केवल दंडित क्यों किया। लेकिन फिर भी हम ये सब सुनना नहीं चाहते हमें उस क्रूर व्यक्ति की गाथा नहीं सुननी है। आपने ये टॉपिक निकाला है तो आप सिर्फ ये देखो तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाशय कि आप ये सब बताओ अगर ये कृष्ण की कथा से संबंधित है अगर ये संबंधित है तो बताओ क्योंकि हम यहाँ पर केवल कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जो कृष्ण की कथा को श्रवण करने के आनंद एक बार लूट चुके हैं उनके चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने के जो आदि होते हैं उनको दूसरे किसी भी जो टॉपिक होता है कोई भी वो हमें दूसरा जो कृष्ण से विलग होता है वो सब व्यर्थ का टॉपिक लगता है। और आगे उन्होंने कहा सूत गोस्वामी से कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं तो उसका बहुत अच्छा तरीका है कि मृत्यु के जो नियंत्रक है यमराज उसको बुलाकर यहाँ पर इस जगह पर बिठा दिया जाए जहाँ पर उनको आनंद आए। तो क्योंकि हम लोग तो 1000 वर्षों तक अभी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं इसलिए यमराज जी को यहाँ पर बुलाकर भेजा हुआ है कि यहाँ पर ही इन्वाइट किया हुआ है वो यमराज भी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं वो भी केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और कृष्ण कथा जब तक चलती रहेगी तब तक यमराज हमें मारेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई ये कृष्ण कथा से हटकर टॉपिक होगा फिर तो वो चले जाएंगे अपना अपनी ड्यूटी करने के लिए। इसलिए आप हमें सिर्फ इस तभी बताओ जो कि ये कृष्ण कथा से संबंधित है तो बताओ क्योंकि इस भौतिक जगत में बहुत से ऐसे लोग होते हैं मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्यश्च वय निद्रया हृयते नक्तम देवाच व्यर्थ कर्मवि वो क्या करते हैं मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वो आलसी होते हैं उनकी बुद्धि भी कम होती है और वो सारा दिन जो है वो व्यर्थ के कार्यों में दूसरे दूसरे कामों में बिताते हैं और रात को सोते हैं लेकिन भगवान की भक्ति के विषय में बिल्कुल भी सोचते नहीं है। तो इतना जब उन्होंने पूछा तो उसके बाद सूत गोस्वामी बताना शुरू किए उन्होंने कहा मैं आपको कोई भी ऐसा विषय नहीं बताने वाला हूँ जो कृष्ण कथा से हटकर हो क्योंकि ये जो महाराज परीक्षित है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये महाभागवत है ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माता के गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे और जब उनका जन्म हुआ था तब वो परीक्षण कर रहे थे वो उस भगवान को ढूंढते थे जन्म लेते ही उन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया कि वो ढूंढ रहे थे कि वो भगवान जो मेरी माता के घर पे जिसने मुझे दर्शन दिए थे वो का, इसीलिए वो परीक्षण कर रहे थे, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। और ये वो महाराज हैं जो जब उनका राज्य था तो उनके राज्य की सीमा के भीतर जैसे ही उन्होंने देखा कि कलयुग प्रवेश हो रहा है, कलयुग के लक्षणों को देखा, तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे दिग्विजय करने के लिए निकलना पड़ेगा। दिग्विजय करने के लिए वो कोई राज्य दूसरे दूसरे राज्यों को हड़पने के लिए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ अपराध हो रहे थे, जहाँ जहाँ कलयुग के कारण लोग मांसाहार कर रहे थे, परस्त्री संग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, नशा कर रहे थे, उन सब जितने भी अलग अलग देश थे वहाँ पर जाके वो उनको विजयी कर रहे थे और वहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे कि ये कार्य नहीं होने चाहिए। तो फिर वो जहाँ जहाँ कलयुग के ऐसी निशानियाँ नजर आ रही थी वहाँ पर गए, और जब उन्हें इसका पता चला कि उन्हें पता चला कि यहाँ पर कलयुग नहीं है, यहाँ पर भी कलयुग ने आक्रमण किया है यहाँ पर, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। लेकिन उनको ये अवसर मिला कि मुझे यहाँ पर इनके इसके साथ कलयुग के साथ युद्ध करने का चांस मिलेगा। और इस तरह से जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनको शत्रुओं को या अधर्मियों को वध करने का अवसर मिलता है। और वो जिधर जिधर भी जाते थे वहां पर उन्हें अपने जो हमारे पूर्वज थे उनके पांडवगण, युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन और प्रथा, उनके विषय में बताया जाता था कि ये जो उनके पूर्वज हैं वो किस तरह से भगवान उन पर कृपा करते थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे तो सदैव भगवान के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ बताते थे, और स्वयं उनके विषय में बताते थे कि आप कितने छोटे छोटे से माता के गर्भ में जो शिशु थे तभी आपको भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया। और उसी के बाद जो लोग अलग अलग बातें बताते थे कि किस तरह से आपके परिवार वालों ने उनको सबको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, और भगवान आपके पूर्वजों से इतना स्नेह करते थे, इतना स्नेह करते थे कि पांडवों के लिए भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार थे। ये पांडव जन जो कि भगवान से इतना प्रेम करते थे, उनकी भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम इतना दृढ़ था कि भगवान कभी तो उनके लिए सारथी बन जाते थे, कभी उनके लिए मैसेंजर बन जाते थे, जो शांति दूत बनकर कभी चले जाते थे, कभी ड्राइवर बन जाते थे, कभी वॉचमैन बन जाते थे, कभी पोस्टमैन बन जाते थे। तो क्यों ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि स्निग्धेषु पांडु जगत प्रणीत, ये जो पांडु हैं वो बहुत ही ज्यादा स्नेह करते थे भगवान श्री कृष्ण को, और वो विष्णु जो कि सारे संसार को चलाने वाले थे, तो वही विष्णु जो है वो पांडवों की सेवक की भूमिका निभाते थे। और जब महाराजा परीक्षित ये सब बातों को सुनते थे तो भक्तिम करोति नृपतिश चरणारविंदे, भगवान के चरण कमलों में उनकी भक्ति बहुत तीव्र होती थी। उसी के बाद आज बता रहे हैं कि तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम्। तस्यैवं यानी कि वही महाराज परीक्षित जब इस तरह से अपने पूर्वजों की विषय में सुन रहे थे और इनको सुनते सुनते आनंदित हो रहे थे, तब पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् मतलब ऐसे ही विचारों में खोए होते थे कि किस तरह से कृष्ण भगवान जो है वो हमारे पूर्वजों से प्रेम करते थे, किस प्रकार मेरी माता उनको प्रार्थना करती थी, किस प्रकार से मेरी दादी कुंती महारानी उनके साथ स्नेह करती थी। अभी इन्हीं विचारों में वृत्ति मनु हम तो नाति दूर कलाश्चर्यम यदासी तन निबोध में, कि अभी इन्हीं विचारों में थे, काफी और दूर नहीं गए थे, लेकिन तभी एक घटना जो ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाली घटना घटी थी। तो आप ये मत समझो कि ये कृष्ण कथा से अलग है। अब आप सुन सकते हो क्योंकि ये कृष्ण कथा से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कृष्ण कथा से संबंधित है। और उसके बाद क्या हुआ था आगे कहते हैं, धर्म पदय केन चरन विच्छायाम उपलभ्य काम पृच्छति स्म पृच्छति स्माश्रुवदनाम विवित्सामिव मातरम् धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायाम् उपलभ्यकाम् पृच्छति स्म माश्रुवदनाम् विवित्सामिव मातरम् धर्मः पदैकेन चरन्। धर्म यानी साक्षात् धर्म, पांव से पद यानी पांव से, एकेन एक ही, चरण यानी विचरण कर रहा था। धर्म जो है वो एक, उसका एक ही पांव रह गया था। और पृच्छति स्याम, पृच्छति यानी शोक की छाया से ग्रस्त, बहुत ज्यादा दुखी, नहीं विच्छायाम, विच्छायाम का मतलब होता है कि धर्म का एक ही पांव था और उसने देखा कि जो गाय है, गाम कहते हैं गाय को, तो गाय जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है। और उस गाय को दुखी देखकर विच्छायाम उपलभ्य गाम, उसने गाय को देखा कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो पृच्छति का मतलब होता है उन्होंने उससे पूछा। जो धर्म था वो बैल के स्वरूप में था और जो पृथ्वी थी वो गाय के स्वरूप में थी। तो धर्म जो है उसके तीन पांव कटे हुए थे, एक ही पांव था, और जो गाय थी वो बहुत ज्यादा विच्छयामा, वो बहुत ज्यादा दुखी थी। तो फिर बैल जो है, जो धर्म के स्वरूप, धर्म जो है वो बैल के स्वरूप में था, तो वो गाय से पूछता है, पृच्छति साम श्रुवदना, मतलब अश्रुवदना मतलब मुख मंडल में अश्रुओं से, तो बहुत ज्यादा उसके आंसू निकल रहे थे। और विविधसम, विविधसम मतलब बिना बिछड़े के, उनका कोई बछड़ा भी नहीं था। इव मातरम, उन ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ अपने बछड़े के लिए तड़पती है ना, ऐसे गाय जो है वो दुखी थी। तो फिर बैल जो वास्तव में धर्म था और उसके तीन पांव कटे हुए थे, तो वो दुखी गाय को देखकर उससे पूछता है। तो वो क्या पूछता है वो आगे के प्रश्न, आगे के उसमें श्लोक में होगा, अनुवाद देखिए। साक्षात धर्म बेल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो पुत्र विहीन माता के समान शोकग्रस्त दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य चला गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बेल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं कि बेल जो है वो धर्म का प्रतीक है और जो गाय है वो पृथ्वी की प्रतिनिधि है। और जब बेल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि बेल और गाय जो हैं वो जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए हैं। अब बेल और गाय खाते क्या हैं? घास खाते हैं। और देते क्या है जानते हैं? बेल जो है वो खेत में हल जोतकर हर एक जीव के खाने के लिए अनाज प्रोवाइड करता है। और जो जो गाय है वो स्वयं तो क्या खाती? घास खाती है, और जीवों को इतना सुंदर दूध प्रदान करती है जिससे जीव की बुद्धि इस योग्य बनती है कि वो आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो यदि गाय और बैल प्रसन्न होंगे तो ही माना जाता है कि संसार भर के लोग प्रसन्न होंगे। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो आश्चर्यजनक भोजन है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं को बड़ी ही सावधानी से रखता है, जिससे लोग प्रसन्नतापूर्वक सर्वत्र विचरण कर सकें। लेकिन इस समय इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपभोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। अभी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिस तरह अगर बैल और गाय प्रसन्न हैं तो समझो पूरा संसार प्रसन्न होगा। तो पहले जितने भी युग बीत गए हैं कलयुग से पहले, उनमें गाय और बैल को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। गाय को के प्रहार करने वाले को दंड मिल गया, फिर भी यहाँ पर यह प्रश्न उठ रहा है कि दंडित क्यों किया गया, उसको मारा क्यों नहीं गया। और यहाँ पर यह कलयुग है कि उसी गाय को जो माता का स्वरूप है, जिसके शरीर में सारे देवी देवता वास कर रहे हैं, उसको खुले आम कत्ल करने की इजाजत दी जाती है। कसाई घर बनाए जाते हैं जहां पर गाय का वध किया जाता है और जो गवर्नमेंट होती है इसकी परमिशन देती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को बता रहे हैं कि इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों के द्वारा भोजन के रूप में उपभोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। बैल तथा गाय को समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वपरि सिद्धि मानकर बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकती है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आज भी अगर ब्राह्मण संस्कृति के लोग और सारे जीव जो हैं वो इस बात पर अटल हो जाएं कि हमें बैल और गाय की रक्षा करनी है, तो केवल इसी प्रयास से बाकी सारे संसार में जो है वो शांति उत्पन्न हो जाएगी, प्रसन्नता संपन्नता उत्पन्न हो जाएगी और जीवों का मनोबल बढ़ेगा। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जब गाय और बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उससे क्या होता है, ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है। ब्राह्मण संस्कृति जो है वो टिकी हुई है, गौ ब्राह्मण हिताय च, इसलिए महाप्रभु को कहा जाता है नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्री कृष्ण जो है वो गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन आज गौ का वध हो रहा है इसलिए ब्राह्मण संस्कृति जो है उसका पतन हो रहा है और इसी कारण जीवों का मनोबल खत्म हो रहा है, जीवों के अंदर जो है वो खिन्नता उत्पन्न हो रही है और इससे गाय और बैल के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका जो परिणाम निकल रहा है वो कितना भयानक है वो हम सोच भी नहीं सकते। हम लोगों को, क्योंकि हम इस कलयुग में रहते हैं ना, तो हम लोगों को ये बात ऐसी ज्यादा दुखदायक लगती क्योंकि यूज टू है ना, रोज देखते हैं गौ हत्या होती है, रोज देखते हैं गौओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो हमको ऐसा लगता इतना ज्यादा दुखदायक ये लगता नहीं है जितना कि बहुत ज्यादा संगीन जुर्म है ये। कितना मतलब उस व्यक्ति को जान से मार डालना चाहिए जो गौ हत्या करता है, क्योंकि शास्त्र कहता है वो धरती जहाँ पर गाय के खून का एक कतरा भी गिरता है ना, तो वहां के लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए वहां के लोग कभी भी आनंद से नहीं जी सकते इस पृथ्वी पर। तो अभी तो यहाँ पर ऐसा होता है हर रोज, खासतौर पर कभी ईद होती है तो कितने सारे गौ की हत्या होती है तो, और उसके कितने भयानक परिणाम निकलते हैं वो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आप सब कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। శ్రీకృష్ణ.